अध्याय एक, प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था। भूमिका। प्राचीन भारत के संबंध में प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो विवरण प्राप्त होता है उससे भारतीय सामाजिक जीवन के संगठन पर प्रकाश पड़ता है। आज जिस रूप में हमें भारतीय समाज का संगठन दिखाई पड़ता है वह सामाजिक संगठन से कहीं भिन्न है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहा है, परंतु सामाजिक ढांचे का मूल आधार आज भी वही है जो उस समय था। प्राचीन भारत के सामाजिक संगठन का ज्ञान हमें वैदिक एवं ब्राह्मण ग्रंथों में होता है। वेद पुराण शास्त्र एवं स्मृतियां, रामायण एवं महाभारत वैदिक कालीन ज्ञान के आधार हैं। इन सभी ग्रंथों में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। इन ग्रंथों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मनुष्य का आचरण तथा व्यवहार समाज से प्रभावित होता है और वह तत्कालीन समाज के अनुसार ही अपने जीवन को ढालता है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में उस देश के समाज, काल, धर्म एवं गुण का अध्ययन इस बात को दृष्टिगत करके किया गया है। मानव जीवन का उद्देश्य। प्राचीन भारतीय समाज का संगठन उस युग की आवश्यकताओं से प्रभावित था। भारतीय दार्शनिकों ने मानव जीवन को नश्वर माना है। उसका कहना था कि मानव जीवन जिसे हम भोग रहे हैं अपने में पूर्ण नहीं है। मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्राचीन भारतीय भारत में सामाजिक संगठन वर्ण आश्रम धर्म पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन का नियमन होता था। इस संपूर्ण सामाजिक संगठन का एक मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक आधार था। सामाजिक संगठन के चार मूल आधार थे, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। मानव जीवन का लक्ष्य इन चारों पुरुषार्थों की सहायता से आवागमन के चक्र से छुटकारा पा उस ब्रह्मा में एकाकार होना। धर्म। प्राचीन काल के वैदिक साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। धर्म शब्द का उद्भव धी धातु से हुआ है जिसका अर्थ धारण करना है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में इसका प्रयोग धार्मिक विधाओं तथा धार्मिक क्रियाओं और संस्कारों के लिए किया गया। अथर्ववेद में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक संस्कारों के लिए हुआ अतः प्राचीन भारत में सामाजिक संगठन व्यवस्था की दृष्टि से चार वर्ण तथा चार आश्रम में विभक्त किया गया था, जिसे हिंदू दार्शनिकों द्वारा वर्ण आश्रम व्यवस्था की संज्ञा दी गई। वर्ण आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव जीवन में एक तरफ तो सुचारू व्यवस्था से मानव का लौकिक सामाजिक विकास करना था, तो दूसरी तरफ उसका आध्यात्मिक आत्मिक विकास कर मोक्ष प्राप्ति हेतु मार्ग सहज करना था। संस्कृत के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिन पर हिंदू की मानव जीवन की व्याख्या आधारित है, सामान्यतः अंग्रेजी में रिलीजन, मनी, वर्क तथा सेलिब्रेशन अनुदित किए जाते हैं। परंतु संस्कृत के धर्म जितना व्यापक अर्थ होता है उतना रिलीजन का नहीं। इसी प्रकार अन्य शब्दों का जितना व्यापक तथा बोधगम्य अर्थ है उतना अंग्रेजी में किए जाने वाले उनका पर्यायवाची शब्दों का नहीं है। आइए अब इन चारों पुरुषार्थों का विस्तृत अध्ययन करें। धर्म को अदृश्य चरित्र का बताया गया है। धर्म को रिलीजन कहना भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि रिलीजन एक विशेष रूप से ही प्रयुक्त किया जा सकता है जबकि धर्म के साथ ऐसा नहीं है। ऐतरेय उपनिषद शतपथ ब्राह्मण में धर्म शब्द का अर्थ धार्मिक कर्तव्यों के समूह से है। वेदों के पश्चात धर्म को अदृश्य चरित्र का बताया गया है। अदृश्य रूपे तु धर्मे अन्य एव धर्म शब्द इति तैतरीय उपनिषद में सत्यम वद धर्म चर धर्मान परम दीतव्यम, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करने में लापरवाह मत बनो। धर्म वास्तव में कर्तव्य है। सायणाचार के मतानुसार स्मृति पुराणों में धर्म आदेशात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त हुआ है। रामायण तथा महाभारत में इसका प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारतीय विचारकों तथा दार्शनिकों का मत था कि मनुष्य धर्म का पालन करके सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव मात्र की भलाई था। उन्होंने धर्म को मनुष्य के सभी प्रकार के क्रियाकलापों का आधार एवं प्रेरक शक्ति माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक स्थान पर धर्म की व्याख्या देते हुए कहा है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करने से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई बुरा कार्य नहीं है। धर्म के महत्व के विषय में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नाराज्यम नैव राजा चा दंडयो न चा दंडिका, धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति। अर्थात ना तो राजा और ना राजदंड और ना दंडधारी राज्य का शासन करता है, वरन धर्म से ही प्रजा की रक्षा होती है तथा उसे सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। छत्रस छत्रम धर्म को राजाओं का राजा कहा गया है। धर्म समस्त संसार की मुख्य टेक है। महानारायणो उपनिषद में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रजा स्पति धर्मेण पापम गुंडति धर्मे सर्वप्रतिष्ठम तस्माद् धर्मम वडोन्ति। अर्थात धर्म से विश्व एवं संसार की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रजागण धर्म का पालन करते हैं तथा धार्मिक रीति से पूजा करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म पापों को दूर करता है। इस प्रकार जो सबसे श्रेष्ठ है वही धर्म है। धर्म का व्यापक अर्थ इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में धर्म मानव जीवन के सभी कार्यों के आधारशिला था। धर्म से संपूर्ण जीवन नियमित होता था। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों का पालन, वर्ण आश्रम धर्म का अनुशीलन तथा मोक्ष के मार्ग पर चलना है। डॉक्टर काणे ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में कहा है, अंत में यह धर्म मानव के विशेषाधिकारों कर्तव्यों बंधनों का द्योतक, आर्य जाति में सदस्य की आचार विधि का परिचायक एवं वर्ण धर्म का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक युग में धर्म का जो अर्थ लगाया जाता है वह संकुचित है। प्राचीन काल में धर्म का अर्थ बड़े ही व्यापक अर्थों में लगाया जाता था। कर्म चतुर्वर्ग में दूसरा स्थान धर्म के पश्चात कर्म का आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता है, कर्म योग में आसक्त है, वही श्रेष्ठ मानव है। वे एक अन्य स्थान पर यह कर्म के महत्व के बारे में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्मस्यायो हाय कर्मणः शरीर यात्रापि तत्ते न प्रसिद्ध वेद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, शास्त्रोक्त विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म का परिपालन करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और ना कर्म ना करने से शरीर में उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। एक अन्य स्थान पर कृष्ण कहा है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे शब्दों में यो कहिए कि संपूर्ण गीता ही कर्मयोग का भाष्य है। गीता में कृष्ण ने जिस कर्मयोग का उपदेश दिया है वह अनासक्त कर्मयोग है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को फल की आसक्ति के बिना कर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए, उसे केवल कर्म की मनोयोग के साथ करना चाहिए तथा फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसी जी ने कर्म की आवश्यकता तथा उसके महत्व के विषय में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। महात्मा गांधी ने यह तथ्य कई बार दोहराया था कि भारत वास्तव में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। जहाँ हमारे प्राचीन ग्रंथों में भाग्य एवं नीति पर बल दिया गया है, वहाँ मानव जीवन में कर्म के महत्व की भी उपेक्षा नहीं की गई है। पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म के महत्व को स्पष्ट किया है। हर्बर्ट रिसले ने अपनी पुस्तक पीपुल ऑफ इंडिया में कहा है, हिंदू धर्म की शक्ति इसके तत्व शास्त्र में नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके विचार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों का फल मिलता है। कर्म का यह सिद्धांत ईसाई धर्म के पश्चाताप तथा क्षमा के आदर्शों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि आध्यात्मिक चोर दरवाजे में विश्वास करने वाला धर्म परायण एवं सदाचारी हो। डॉक्टर पी एन प्रभु ने कर्म के महत्व के संबंध में अपनी पुस्तक हिंदू सामाजिक संगठन में लिखा है कि हिंदू विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नया जन्म लेता है, जिससे कि वह अपने कर्म के दुष्प्रभाव से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कर्म का मनुष्य के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति को पुनर्जन्म केवल इसलिए मिलता है कि जिससे कि वह अच्छे कर्मों के द्वारा अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के दुष्प्रभाव को हटाकर मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष। प्राचीन भारतीय विद्वानों में भी दो प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। प्रथम वर्ग में तो वे विद्वान आते हैं जो केवल भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सांसारिक सुख समृद्धि को प्राप्त करना है। द्वितीय श्रेणी में वे विद्वान हैं जो मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इन लोगों के मत में मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन लोगों के मत में मोक्ष तथा अन्य तीनों पुरुषार्थों धर्म अर्थ एवं काम में आपस में कोई विरोध नहीं है। मोक्ष के संबंध में भी प्राचीन भारतीय विद्वानों में विभिन्न मत है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन है। विद्वानों के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब आत्मा संसार के आवागमन से मुक्ति पाकर परमात्मा में लीन हो जाती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। पुरुषार्थ के चतुर्वर्ग में मोक्ष एवं काम दोनों साध्य हैं तथा काम धर्म एवं अर्थ इन साधने के साधन है। व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करके मोक्ष प्राप्त करता है। पुरुषार्थ एवं त्रिवर्ग। पुरुषार्थ के अंतर्गत चार चीजें आती हैं, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। प्राचीन हिंदू विचारकों के अनुसार इन चारों को प्राप्त करना मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, परंतु मनु ने त्रिवर्ग में केवल तीन चीजों धर्म अर्थ एवं काम को ही माना है। उनके अनुसार मनुष्य में इन तीनों चीजों के संतुलन से ही अच्छाई संभव होती है। त्रिवर्ग का सामाजिक जीवन में महत्व है। प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में त्रिवर्ग का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। संपूर्ण सामाजिक ढांचा इन तीनों चीजों पर ही निर्भर करता था। वानप्रस्थ आश्रम तक के ये तीनों चीजें साथ साथ चलती थी। वस्तुतः मनुष्य के सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने वाले यही तत्व थे। प्राचीन भारतीय विचारकों ने पुरुषार्थ के सिद्धांत के द्वारा मनुष्य की सभी आकांक्षाओं तथा इच्छाओं को जीवन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग की विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है।